ओम शांति।
ये हमारा मर्जी वाजी है। तो इस नए जन्म में सब कुछ बदल जाता है। हमारी दिनचर्या, बोल चाल, रहन सहन, खान पीन, ड्रेस सब बदल जाता है। तो आदर्श दिनचर्या हमारी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले अमृत वेला का इम्पोर्टेंस हम जानते हैं। दुनिया में भी कहते हैं अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बाबा भी कहते हैं सवेरे सो जाओ और जल्दी उठो, 10 बजे सो जाओ, 3:30 बजे उठ जाओ। और मम्मा तो कितने भी बजे सोती थी 2:30 बजे उठ जाती थी। तो अमृत वेला ये श्रेष्ठ समय है, जबकि सारी दुनिया सोई हुई है और योगी जागते हैं। और ऐसा पावरफुल एटमॉस्फेयर शांति का बनाते हैं। तो इसलिए बाबा से शक्ति लेने का श्रेष्ठ समय यही है, 2:30 से 5:30। तो लौकिक में भी कई साधु संत महात्मा सवेरे सवेरे उठकर परमात्मा की याद में बैठते हैं। और मुस्लिम कंट्री में 4:30 बजे उनकी प्रार्थना शुरू हो जाती है, वो भी माइक पर, ताकि सब उठ जाए। तो इसलिए ब्राह्मणों का लक्ष्य होता है कि इस समय का हम मैक्सिमम लाभ लें। और उसके लिए भल 10 बजे के पहले भी सो जाओ, तो इसलिए जितना जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तो बाबा से शक्ति लेंगे। दूसरी हमारी दिनचर्या है ज्ञान स्नान। बाबा कहते हैं ज्ञान सागर से निकली हुई आप ज्ञान नदियां हो। मुरली हमारा बुद्धि का भोजन है। और बाबा कहते थे जब तक मुरली नहीं पड़ी है सुनी है तब तक नाश्ता नहीं करना है, स्थूल शरीर को भोजन नहीं देना है। तो इसलिए ज्ञान स्नान बहुत जरूरी है और अपने को गॉडली स्टूडेंट समझना है। इस ईश्वरीय विद्यालय के हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में जरूर भेजेंगे, बच्चा चाहे रोए करे कुछ भी बहाना बतावे ना, कई बच्चे हैं ना स्कूल में नहीं जाना होता है ना तो बहाना बताएंगे, मेरे पेट में दर्द होता है, मेरे पीठ में दर्द होता है, ये वो। और माँ बाप क्या करेंगे, चलो पेट में दर्द होता है ये काढ़ा पी लो जाओ स्कूल में। और कनाडा अमेरिका में तो क्या होता है, बर्फ कितना होता है, सवेरे सवेरे वो बर्फ सफाई करके भी कार साफ करके बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है चाहे बारिश है, बच्चों को स्कूल में जरूर जाना है। और ये तो है ईश्वरीय पढ़ाई, सबसे ऊंची पढ़ाई, तो ये तो मिस नहीं करनी चाहिए। और आजकल तो इतनी फैसिलिटी है कि चलो आप शरीर से नहीं पहुंच सकते हो, घर में भी टीवी पर सुन सकते हैं, अपने मोबाइल पर मुरली सुन सकते हैं। परंतु ये ध्यान रखना है कि मुरली के टाइम मुरली सुननी है, ऐसे नहीं कहेंगे नहीं नहीं सवेरे नहीं, मैं दिन में जब टाइम मिलेगा तब पढ़ूंगी या तब सुनूंगी, नहीं, ब्रेकफास्ट के पहले मुरली जरूर पढ़नी है या सुननी है। तीसरा हमारा नियम होना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन। ब्राह्मण, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, ब्रह्मा को आचार विचार फॉलो करना है और ब्रह्मचर्य फॉलो करना, मनसा वाचा कर्मणा, स्थूल में सूक्ष्म में हमें देखना है कि हम अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा से संबंध रखे, देह ना समझे और देह के भौतिक सुखों को नहीं चाहे। तो ब्रह्मचर्य का सूक्ष्म रूप में भी हमको देखना है, किसी के प्रति आकर्षण न हो, प्रभावित न हो, क्योंकि क्या होता है हम किसी अच्छी पर्सनालिटी होती है तो उसे प्रभावित हो जाते हैं, कोई अच्छी सेवा करते हैं प्रभावित होते हैं, कोई अच्छा लेक्चर देते हैं प्रभावित होते हैं, कोई अच्छा योग कराते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी काम विकार का सूक्ष्म रूप है, न नाम रूप का प्यार हो न फैमिलियारिटी हो कुछ भी न हो, ये ध्यान रखना है। फिर है अन्न की शुद्धि, सात्विक अन्न खाना है, बाबा की याद में पकाना है, बाबा की याद में खाना है, जितना हो सके शांति में बाबा की याद में, कम से कम भोजन शुरू करो बाबा की याद में करो और कोशिश करो पूरा टाइम याद में रहो। और तमोगुणी चीजों का त्याग, प्याज लहसुन अंडे मांस सिगरेट शराब आदि तमोगुणी चीजों का बिल्कुल त्याग करना है। और हमारा बेहद का संन्यास है, रहना है ग्रस्त व्यवहार में परंतु पवित्र रहना है। तो कर्म करना है, अपनी जिम्मेवारी निभानी है, प्रयोग में रहकर करो, जो भी करो बाबा की याद में, क्योंकि खाना पकाना है, सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, माताओं को घर संभालना है, भाइयों को अपना नौकरी धंधा करना है, पर बाबा हमेशा हमको कहते हैं 8 घंटा योग में रहो, 8 घंटा नौकरी, शरीर का काम, कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बजाओ, 8 घंटा अपने रेस्ट खाने पीने आदि में स्नान में दियो। तो बैलेंस, घर भी संभालना है, शरीर की भी संभाल करनी है, तो योग और सेवा भी करनी है, कर्मयोगी। फिर हमें एक बात पर अटेंशन देना है कि हम संग दोष से दूर रहें, क्योंकि कहते हैं संग तारे कुसंग बोरे, और हमने देखा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो क्या है कि कई भाई बहने अपने मित्र संबंधियों मित्र के कहने से ज्ञान में आए, तो ज्ञान के पहले गांजा मरवाना सिगरेट शराब आदि आदि तो पान करते हैं, 80% लोगों ने सब ड्रग्स का सेवन किया। अब ज्ञान में आ गए, शुरू शुरू में तो बाबा की बहुत मदद रहती है, सब कुछ छोड़ दिया, पर 5-7 साल के बाद ये लोग पांडव भवन शक्ति भवन में रहते थे, तो पांडव भवन में एक भाई ने शुरू कर दिया मरवाना, और उसके संग में दूसरे लोगों ने भी शुरू कर दिया, और सब एक साथ भागंती हो गए। इसलिए बाबा कहते हैं सत्संग जरूर करो और बुरे संग से दूर रहो। फिर हमारा सब्जेक्ट है तीसरा, दैवी गुणों की धारणा। तो पहले तो जो आया मन में बोल देते थे, कर लेते थे, गुस्सा कर लेते थे, तो कहते थे क्या है, बच्चे तंग करते हैं, बहाना, बच्चे तंग करते हैं, गुस्सा नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं उनके साथ, तो वो नहीं ठीक चलते हैं, इसलिए मारपीट करना, गुस्सा करना, आवाज से बोलना, ये जैसे कि कॉमन हो गया था। अभी देखना है कि स्नेह से सब बुराइयां छोड़नी है, क्योंकि स्नेह है, सहनशीलता है, गुस्सा छूट जाता है। तो दैवी गुण की धारणा, ये हमारा सब्जेक्ट है। इस पर ध्यान रखना है कि हम पुराने संस्कार, विकारी संस्कारों को न चला के बाबा से शक्ति लेकर अपने आप को दैवी गुणों की धारणा है, जो हमारे आदि स्वरूप है दैवी और अनादि स्वरूप आत्मा है। दोनों के संस्कार स्नेह, शांति, सुख, आनंद आदि आदि है, वो धारण जरूर करना है। और हमारे दिनचर्या में सेवा भी होनी चाहिए। शुरू शुरू में तो बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते थे दादियों को, जब तक सेवा नहीं की है भोजन नहीं खाना है। तो इसलिए चाहे गृहस्थी भी है, समय निकाल करके ईश्वरीय सेवा करनी। और बाबा कहते हैं गृहस्थियों को, घर में अपना चित्र रखो, जो भी मिलने आए चित्रों पर समझानी दो, और व्यवहार में जाते हैं, क्योंकि गृहस्थियों को शादी में जाना पड़ता है या कई प्रकार के सोशल एक्टिविटीज होती है जिसमें अटेंड करना पड़ता है, स्पेशली शादी है, मंगनी है, यह है वो है, जाओ लक्ष्य से कि यह सेवा जरूर करनी। ऐसे नहीं कि वहां जाकर बन ठन के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, खा पी के चले आओ, नहीं। आज भी बाबा ने कहा ना मुरली में कि भले कपड़े पहनना है, ऐसे तो नहीं कि हम सफेद कपड़े पहन के शादी में जाए, स्पेशली गृहस्थ लोग, तो भले कपड़े पहनो परंतु बाबा की याद में जरूर रहो, देह अभिमान ना हो। और रात्रि को अपना चार्ट देखना है कि सारे दिन में हमने कितना योग किया, हमने कौन सा ज्ञान का मनन मंथन किया, कौन सा दैवी गुण धारण किया, कितनों की सेवा की, किसी को सुख दिया या दुख दिया, दुख नहीं दिया सुख दिया, ये भी अपना चार्ट देखना है और बाबा के याद में सोना है। कम से कम 2-3 मिनट बाबा को याद करके फिर सोने जाओ। फिर हमारी दिनचर्या में देखना है कि हम अपने दिल की बात है या वीकनेस है, कोई भी कमजोरी है, वो सिर्फ बड़ी बहनों को सुनाए, बड़े टीचर जो है उनको सुनाए, इधर उधर ना सुनाए, छोटी बहनों को भी ना सुनाए। और सेंटर पर धंधे दोरी की बातें नहीं, पैसे के लेन देन की बात ना, न किसी से उधार लो न किसी को उधार दो, ये भी थोड़ा हमें ध्यान रखना है, क्योंकि उधार देने से क्या होता है, जब तक सामने वाली व्यक्ति पैसा वापस नहीं देती है तब तक बुद्धि योग जाता है, इसने पैसा नहीं दिया है, इसने प्रॉमिस दिया था पर अभी तक दिया नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं न उधार दो न लो। हम सेवाधारी हैं, नम्रता। बाबा कहते हैं कि निमित्त समझ कर सेवा करो, अहम ना हो कि मैंने इतनी सेवा की है। चाहे तन मन धन से हम सेवा करते हैं, मन वचन कर्म से सेवा करते हैं, तो ये अहम न हो कि मैंने किया। और बाबा कहते हैं दूसरों को आगे रखो, पहले आप। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, भल खुद यज्ञ शुरू किया परंतु हमेशा बच्चों को आगे रखा और बच्चों को सम्मान दिया। और पवित्रता, ये तो ब्राह्मणों की मुख्य शिक्षा है, तो पवित्रता धारण करनी है, परंतु सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, सब विकारों को छोड़ना है। काम क्रोध लोभ मोह द्वेष वैर ईर्ष्या अलबेलापन आलस्य सब दसों विकारों को छोड़ना है, उसका सूक्ष्म रूप भी ना हो। और यदि कोई भूल की तो अपने आप को सजा दो। यदि दीदी मनमोहिनी दीदी के पास कोई जाता था अपनी भूल बताता था तो दीदी कहते थे जाओ बाबा के कमरे में योग करो 2 घंटा 4 घंटा। और कम से कम यदि बड़ी भूल की है तो बाप दादा को पत्र लिखकर बताओ, या निमित्त जो बड़ी बहने हैं उनको सुनाओ, क्योंकि वो सुनाने से आप हल्के हो जाते हैं और योग लगेगा, नहीं तो दिल खाते रहेंगे, भारी लगेगा, योग ठीक नहीं लगेगा। और लौकिक में रहते हुए हर एक के साथ अलौकिक संबंध, अलौकिक व्यवहार करना है। मेरा पन्ना बाबा के बच्चे हैं, आत्मा है, भाई भाई है, उस दृष्टि से चलना है, क्योंकि लौकिक पहले क्या होता था लौकिक में कि पुरुष लोग स्पेशली इंडिया में ऐसे समझते थे चलो खाना पकाना ये तो पत्नी का ही काम है, और घर में जरा भी हाथ नहीं लगाएंगे, आते ही गरम गरम चपाती चाहिए तो वाइफ कहाँ भी होंगी उसको दौड़ दौड़ के आना पड़ेगा कि घर में आएंगे गरम चपाती देने पड़ेंगे। सवेरे माता क्लास में भी नहीं जा सकती है क्योंकि भाई को टाइम पर नाश्ता देना है या टिफिन देना है बच्चों को, तो घर की इतनी जिम्मेवारी माताओं को हो जाती है जो पढ़ाई योग टाइम पर नहीं होता है। तो ये नहीं, घर में भी हाथ बढ़ाना है और नहीं। बाबा कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो पत्नी को सेवा करने के लिए भी छुट्टी दे दो कभी कभी, ऐसे नहीं कि सारा समय माता को घर में ही रखना है ना, बच्चे और पति की सेवा ही करनी है। तो इसलिए घर में भी अपनी दिनचर्या ऐसे रखनी है जैसे मधुवन में। बाबा कहते हैं मधुबन में तो आप हमेशा नहीं रह सकते हो, पर घर को मधुबन बनाओ। अर्थात घर में दिनचर्या मधुबन जैसी रहे और घर वालों से अलौकिक व्यवहार रहे। तो घर में भी फुल ड्रेस पहन के रहे, दिनचर्या भी घर में रहते मधुबन जैसी बनाओ। तो क्या होगा, आप योग युक्त रहेंगे और आपकी उन्नति होगी। और जितना हो सके, चाहे सेंटर की बहने हैं चाहे गृहस्थी है, अपना काम खुद करे, दूसरे से स्थूल सेवा ना दे। क्योंकि यहां जितनी स्थूल सेवा लेंगे रिटर्न करना पड़ेगा सत्युग में, इसलिए बाबा कहते हैं स्थूल सेवा भी जितना हो सके औरों से ना लेवे और अपने हाथ से अपना काम करें। तो बाबा के बच्चे हैं, हमें बेहद का संन्यास करना है तो त्याग हमारे में जरूर होना चाहिए। परंतु त्याग के लिए वैराग्य जरूरी है, क्योंकि जब तक इस पुरानी दुनिया से वैराग्य नहीं तब तक क्या होगा, त्याग टेम्पररी रहेगा और हम उतना फिर त्याग नहीं कर सकेंगे। उसमें भी सबसे बड़ा त्याग क्या है, नींद का त्याग। नींद का त्याग ऐसे कभी नहीं कहूंगे, ये तो हमारी पुरानी आदत है, कई बार कही है ना, यदि आप रात को जागना कहो हम जाग लेंगे, पर सवेरे उठना बहुत मुश्किल है। तो ये पुरानी आदत को, पुराने स्वभाव संस्कार को मेरा संस्कार में कहना है, अपने आप को याद दिलाना है हम ब्राह्मण हैं, हमारा ये मर्जी व जन्म है, हमें अभी बाबा की श्रीमत अनुसार चलना है। दुनिया वाले तो समझते हैं ब्राह्मण जीवन बहुत मुश्किल है, क्योंकि 365 दिन जल्दी उठना है, नहीं तो क्या करते थे, संडे को समझते थे चलो आज तो नौकरी नहीं जाना है, आराम से 8-9 बजे उठते थे। और विदेश में तो जवान लोग हैं ना, सैटरडे सारी रात नाचते रहेंगे और संडे 2-3 बजे तक उठेंगे नहीं। तो उनको अपना दिनचर्या बिल्कुल बदलने पड़ी। जैसे कहते हैं ना, भोगी की दिन योगी की रात, योगी की दिन भोगी का रात, तो ऐसा जीवन हमारा ना हो कि संडे चलो संडे तो आराम करना है। तो हमारा जीवन अभी जैसे कि बिल्कुल बदल गया। लोग हंसेंगे, मजाक करेंगे, घर वाले भी सामना करेंगे, ये क्या, माँ बाप कहेंगे ये क्या, हम अच्छुत थोड़ी है जो हमारा खाना नहीं खाते हैं, सारी जिंदगी आपने हमारे घर का खाना खाया, अभी नहीं कहती है। तो खाने पर सबसे ज्यादा बहस होती है कि ये क्या, या घर वालों को शौक होगा टीवी देखने का तो क्या होता है, टीवी देखने बैठ जाते हैं कभी कभी। इंडिया में तो इतना खराब नहीं है, पर विदेश में पति कहेगा मैं जो करता हूं तुमको करना, मैं टीवी के सामने बैठा हूं तुमको भी टीवी के सामने बैठना, जहां भी जाना है साथ में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है साथ में चलना है, परिवार को साथ में ले जाना है। यहां समाज में कि हाँ जहां जाते हैं साथ में जाना और नखरे नहीं करना है, ये नहीं करना। तो क्या है कि स्नेह से उनको समझाना पड़ता है कि हम क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। बहस नहीं करनी है या घर में अशांति नहीं फैलानी है, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो ये चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में अशांति है तो क्या फायदा। तो विदेश में क्या हुआ, फिलीपींस में हमारे पास एक यंग भाई ज्ञान में आता था, उसकी शादी हो गई थी ज्ञान में आने के पहले और एक बच्चा भी था। तो शुरू शुरू में ज्ञान में था तो बहुत शौक था, सवेरे शाम आता रहे, सेवा करता रहे। तो उस बेबी हमारे पास आई कि ये क्या, हमको संडे को भी घुमाने नहीं ले जाता है बच्चों को लेके, तो फिर बैलेंस रखना पड़ता है। हमने भाई को समझाया कि भाई सवेरे भले क्लास में आओ, शाम को घर में टाइम दो और वीकेंड में जरा घूमने घुमाने ले जाओ। तो फिर धीरे धीरे पत्नी सहयोगी बन गई, क्योंकि क्या होता है, चलो ब्रह्मचर्य तक का तो कभी कभी पालन कर भी लेते हैं, पर कहते हैं बाहर भी साथ में नहीं चल रहा है, ये क्या बड़ी बात। तो इसलिए कभी कभी घर वालों को खुश करने के लिए साथ में चलना है, परंतु देखना है कि अपना नियम चालू रखना। और विदेश में तो बहुत अच्छा है, यदि कोई कहे हम खाना खाने आएंगे, हम खुद पकाएंगे, तो उन्हों को तो अच्छा लगता है, क्यों एक दिन खाना पकाने से छुट्टी। तो हमारी एक बहन पार्लियामेंट में काम करती थी और उसको एमपी के साथ काम करती थी, तो उसको पार्टी की तैयारी करनी होती थी, ऑर्डर देना होता था, वो औरों के लिए ऑर्डर देती थी और अपना बना के ले जाती थी। कुछ समय तो सेंटर पर रहती थी न्यूजीलैंड में, तो इंडियन माताएं मुठिया वगैरह अच्छा बनाती है, तो ऐसा कुछ बनाकर ले जाती थी और उसको खा के सब खुश होते थे और अपना ऑर्डर देती थी फ्रूट प्लेट। तो फ्रूट प्लेट में क्या होता था, फ्रूट प्लेट जब वहां विदेश में देते हैं, कोई ग्रीन कलर, कोई रेड कलर, कोई ब्लू कलर, कोई सफेद कलर, कोई पीला कलर, ऐसे फ्रूट अलग अलग कलर के ऐसे सजा कर देते हैं। सब कहे वो तुम्हारा खाना तो बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है, युक्ति से चलना है, परंतु फिर भी अपना नियम बना के रखना है। और घर में अपने बच्चों से प्यार से भी चलना है तो लॉफुल भी रहना है, बैलेंस रखना है, स्वीट भी रहो और स्ट्रिक्ट भी रहो, क्योंकि सदा आप स्वीट रहेंगे ना तो बच्चे माथे चढ़ जाएंगे, कुछ ठीक नहीं चलेंगे। इसलिए डिसिप्लिन भी रखना है कि इतना घंटा पढ़ाई पढ़नी है, इतना घंटा टेलीविजन देखना है, इतना घंटा भले बाहर जाकर खेलो, और उसके साथ उसका किसके साथ संग है उस पर भी ध्यान रखो, क्योंकि आजकल बच्चे संग दोष में ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। खास पंजाब में देखा है कि आजकल ड्रग्स का बहुत सेवन करते हैं, तो इसलिए बच्चों पर ये भी ध्यान रखूं, क्योंकि बच्चों को घर से प्यार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उसके साथ संग दोष में चले जाते हैं। इसलिए बैलेंस रखना है, अपनी पढ़ाई भी जरूर पढ़नी है, तो घर की जिम्मेवारी भी ठीक बजानी है। तो जब बैलेंस रखेंगे तो सबकी दुआएं मिलेंगी, नहीं तो घर वाले ही कंप्लेन करेंगे, हाँ सवेरे उठी सफेद साड़ी पहनी चल पड़ी, शाम को चल पड़ी सेवा करने जाना। तो इसलिए घर वाले कभी ये कंप्लेन नहीं करे कि खाना ठीक नहीं पकाती है या खाना स्वादिष्ट नहीं है। क्या है, विदेश में तो जो लोग मीट खाने के लिए आदती हो गए हैं उन माताओं को इंडियन खाना या स्वादिष्ट खाना पकाना सीखना पड़ता है ताकि कंप्लेन ना करे घर वाले कि प्याज नहीं, लहसुन नहीं, मीट नहीं, ये क्या खाना पकाया है। तो इसलिए खाना भी ऐसा स्वादिष्ट पकाओ जो उनको कंप्लेन करने का ना रहे कि ये खाना भी ठीक नहीं पकाती है, घर की सफाई भी नहीं करती है, बस बाबा 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 सारा दिन करती रहती है। तो अपनी दिनचर्या ऐसी बनानी है जो पढ़ाई भी पढ़े और जितना समय मिले युक्ति से सेवा भी करे और घर भी संभाले। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में रहकर पूरा करेंगे।